कर्तव्यों एवं जिम्मेवारियों में सफल बनाता है।
ब्रह्मा कुमारीज बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग प्रेजेंट्स टू डे ई कॉन्फ्रेंस पाथवेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी।
नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्रतिवर्ष तो हम एक दूसरे से रूबरू मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष परिस्थितियों वर्ष हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन तन भले ही दूर है लेकिन मन से नजदीक हैं। ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारीज का बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग का उद्देश्य ये है कि कैसे व्यापार में हम उन्नति भी करें और साथ साथ संतुष्ट भी रहें, कैसे मानवता की सेवा भी करें और साथ साथ अपने जीवन में आंतरिक विकास भी करें, कैसे आध्यात्मिकता का हम अपने व्यवसाय में समावेश करें और जीवन में सुख शांति और आनंद का अनुभव करें। इसी उद्देश्य से इस विंग के द्वारा हेडक्वार्टर्स में और अलग अलग स्थानों पर कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और मेडिटेशन के कैंप्स आयोजित किए जाते रहते हैं। इस बार जो ई कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है उसका विषय है पाथवेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। हम सब जानते हैं कि जीवन में हम सबको सफलता भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, शांति भी चाहिए, तो साथ साथ स्थिरता भी चाहिए। जब ये सब चीजें मिलती हैं तभी हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। इसीलिए ये सुंदर विषय इस बार के इसी कॉन्फ्रेंस में रखा गया है, जिसमें बहुत ही अच्छे और अनुभवी वक्ताओं के विचार हम सुनेंगे जो हमारे जीवन में इन सभी सुंदर मूल्यों का समावेश करेंगे। आइए, आप सबका स्वागत करने के लिए मैं स्वागत कर रहा हूं हरीश जी का, जो कि आप सबके अभिनंदन के साथ साथ इस विंग की एक्टिविटीज से हम सभी को अवगत कराएंगे। हरीश जी कंसल्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, साथ ही पिछले 9 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। हरीश जी,
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। पाथवेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग, यह विषय आज के और आने वाले समय के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो स्वयं के लिए हो, परिवार के लिए हो, सर्विस करने वालों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, देश की अर्थव्यवस्था के लिए हो, समाज के लिए हो और देश के लिए हो, तो हमने सोचा कि क्यों न हम इस विषय पर विख्यात सफल इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन और साथ में संपन्न आध्यात्मिक हस्तियों को एक संगोष्ठी द्वारा उनसे चर्चा करें, मार्गदर्शन ले और उनके अनुभव सुने और हमारा रास्ता नापे। हम उनके विचारों को समझेंगे और हमारे मार्गदर्शन के लिए उपयोग करें। इट्स ए वंडरफुल फ्यूजन ऑफ ए सक्सेसफुल अचीवर विद अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आध्यात्मिकता। तो यह 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हमारी सम्माननीय आदरणीय परम पूज्य दादी हृदय मोहिनी जी की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग यानी कि प्रभाग द्वारा आयोजन किया है, तो इस प्रभाग की चेयरपर्सन वंस अगेन आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, वाइस चेयरपर्सन जयपुर के नामी ग्रामी इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी मदनलाल शर्मा जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर सम्माननीय आदरणीय रमा कुमारी योगिनी बहन जी, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय व सम्माननीय रमा कुमारी बीके बहन जी की तरफ से, हमारी अन्य दादियां, वरिष्ठ भाई बहने, समग्र रमा कुमारी परिवार और बिजनेस विंग की तरफ से आप सभी का आपकी भ्रुकुटी में बीच में सुखड़ का तिलक लगा के हार्दिक स्वागत है। मैं मानता हूं आप सभी ब्रह्मा कुमारी संस्था को तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। जीवन मूल्य मानव को महान और सम्माननीय, सरल, सुखी और आनंदित बनाता है, लेकिन आज हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और निरस हो गया है। मानसिक शक्ति भी क्षीण होते जा रही है, तो इन्हीं जीवन मूल्यों के पिछले 8 दशक से पहचान करा रही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यानी कि वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। इट्स ए यूनिक इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। परमपिता परमात्मा की भावना ज्ञान शक्ति इस संस्था को चलाने के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना 1936 में सिंध हैदराबाद में हुई थी। संस्था ने उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख के नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का संचालन बहनों और माताओं को सौंपा। वर्ष 1950 में अखंड भारत के विभाजन के समय संस्था राजस्थान में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। आज भी ब्रह्मा कुमारी संस्था का संचालन वहीं से हो रहा है। तत्पश्चात विश्व कल्याण के उद्देश्य से संस्था ने अपने कदम विदेश की तरफ बढ़ाए। दुनिया के 140 देशों में जिसमें कई इस्लामिक देश भी है वहां देश और विदेश के मिलके 4,500 से अधिक सेवा केंद्र है। 30,000 से ज्यादा बीके पाठशालाएं भी इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए संचालित है। संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जब अपना देह 1969 में त्याग दिया तो संस्था का कारोबार दादी प्रकाशमणि जी ने चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज की पोजीशन लेकर संभाल लिया। उन्होंने देश और विदेश में सेवा का विस्तार इतना किया तो अब संस्था का मुख्यालय एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बन गया है। वर्ष में 1,000 से भी ज्यादा सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार मुख्यालय भारत के सभी जोन और सब जोन में आयोजन किया जाता है। वर्ष 1981 में ब्रह्मा कुमारी संस्था को यूनाइटेड नेशन की तरफ से एनजीओ की मान्यता प्राप्त हुई और मानव और विश्व कल्याण की सेवा के लिए संस्था को शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के कई उत्तम और मूल्यनिष्ठ उद्देश्य है जिसे लेकर हम सभी राजयोग के स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए इनमें से थोड़े एम ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूंगा। सभी चाहते हैं कि विश्व परिवर्तन हो, लेकिन होगा कैसे? पहले मुझे बदलना है। हम कहते हैं हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। दूसरा है हमें सर्व के सहयोग से एक सुंदर और सुखमय संसार की स्थापना करनी है। यहाँ की पढ़ाई है मनुष्य से देवता कैसे बने और देवताई गुण हम कैसे धारण करें। ऐसे कई उत्तम और मूल्यनिष्ठ उद्देश्य को लेके ब्रह्मा कुमारी समाज की और देश की सेवा कर रही है। समाज के सोसाइटी के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के हेतु प्रकार हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों को निःशुल्क राजयोग की शिक्षा दी जाती है। महिलाओं युवाओं शिक्षणविद मीडिया कर्मी स्वास्थ्य से जुड़े हुए व्यापार एवं उद्योग से जुड़े और अन्य सभी वर्गों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए 3 दशकों से समाज के सभी वर्गों की अविरत सेवा कर रही है। इस प्रभाग में से एक प्रभाग व्यापार एवं उद्योग प्रभाग यानी कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है जिसने यह ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ये बिजनेस इंडस्ट्री विंग वर्ष दरमियान हेडक्वार्टर माउंट आबू और आबू में कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है और वर्ष दरमियान भारत के सभी जोन और सब जोन की कॉर्पोरेट कंपनीज में सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप के अंतर्गत कई मैनेजमेंट के शॉर्ट और लॉन्ग टाइम कोर्सेज भी कराते हैं। संस्था में वर्तमान समय आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी मुख्य प्रशासी का रूप में संस्था का संचालन कर रही है और आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी अतिरिक्त प्रशासिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। आध्यात्मिक जगत के ये संपन्न चमकते हुए सितारे इस ब्रह्मा कुमारी संस्था को परमात्मा के मार्गदर्शन में निर्विघ्न चला रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में कोई भी धर्म कोई भी जाति आयु भाषा और देश का व्यक्ति इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। यहाँ मेडिटेशन भी सिखाया जाता है और तो व्यक्ति योग बल से अपनी आत्मा को मानसिक रीति से सभी परिस्थिति को पार करने के लिए अपने आप को सक्षम और शक्तिवान बना सकता है। अब तक विश्व की कई नामी ग्रामी विख्यात आत्माओं ने इस ज्ञान का लाभ लेके अपने जीवन को सफल, हेल्दी, वेल्दी और सुखदायी बना चुके हैं। इन आत्माओं के द्वारा एक मूल्यनिष्ठ सुखमय संसार की स्थापना हो रही है। तो आओ आप सभी भी इस ज्ञान का, जो स्वयं परमात्मा ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा सिखाते हैं, उसका लाभ लो और सारे विश्व को, समाज को और हर एक व्यक्ति को शांतिमय, सुखमय जीवन बनाने में अपना सहयोग दो। ध्यान रहे, ब्रह्मा कुमारी संस्था की सभी सेवाएं किसी भी समय, किसी भी स्थान पर निशुल्क है। तो फिर से आपका स्वागत है इस दो दिन की ई कॉन्फ्रेंस की सफर पर। चले और सभी के लिए एक स्थिरता भरा और समृद्धि का मार्ग खोजे, यानी फाइंड पाथवेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ है वक्ता के रूप में विख्यात आध्यात्मिक जगत के चमकते हुए सितारे और प्रैक्टिकल में सफल इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन। विशिंग द ऑडियंस ए डिलाइटफुल लिसनिंग, लर्निंग और एम्पावरमेंट। ओम शांति।
मित्रों, हम में से हरेक आसमां को छूना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, लेकिन कई बार वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है असफलता हो जाए। तो भविष्य की अनिश्चितता का भय उसे कई बार आगे बढ़ने से रोक देता है। अपने भय पर विजय पाने के लिए जीवन में हिम्मत का होना, साहस का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक सुंदर सा विषय ओवरकमिंग फियर एंड मैनिफेस्टिंग करेज, इसको लेकर हमारे बीच आ रही हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी। आप सीनियर राजयोग शिक्षिका हैं, बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग की हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं और सीनियर फैकल्टी भी हैं। देश विदेश की आप यात्रा करते हुए सब में आध्यात्म की ज्योत जलाती रहती हैं ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के साथ संलग्न राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस में हम आप सबसे मिल रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि समग्र भारतवर्ष के व्यापार और उद्योग क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों से हम बातचीत कर रहे हैं। हमें याद आता है प्रतिवर्ष हम विद्यालय के मुख्यालय में बहुत बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करते रहे हैं। हमारे हेडक्वार्टर के परिसर में पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से व्यापार और उद्योग क्षेत्र के भाई बहने आते रहे। अब समय की बलिहारी कि हम ई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम आपस में मिल रहे हैं। अब ये भी विज्ञान की बलिहारी जो ऐसे साधन बनाए हैं कि हम आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। वर्तमान समय जिस परिस्थिति से संसार गुजर रहा है, समस्त विश्व के सामने जो महामारी की स्थिति आई और उसके चलते लंबा समय लॉकडाउन की स्थिति रखनी हुई, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि व्यापार और उद्योग जगत पर उसकी काफी असर आई है। हमने, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं करते हैं तो काफी मानव जीवन खत्म होते हैं, और लॉकडाउन करते हैं तो इकोनॉमी पर असर आती है। इसलिए हर देश को कोई ना कोई दृष्टि से नुकसान तो भुगतना ही पड़ा है। हमारा भारत देश आध्यात्मिक है, इसलिए मानव जीवन की वैल्यू है कि हम जीते रहेंगे तो फिर उठ सकेंगे, उग सकेंगे और फलित हो सकेंगे। तो लंबा लॉकडाउन चला तो आर्थिक दृष्टि से काफी संकट की परिस्थिति बनी है, परंतु जीवन है, माना ऐसी परिस्थितियां तो आती ही रहती है, हमें उसको सहन भी करनी होती है और उससे पार भी उतरना होता है। इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन के एक रिपोर्ट में भी हमने सुना था, वर्ल्ड बिजनेस एकेडमी के रिपोर्ट में भी ये सुना था कि इस महामारी के कारण अब काफी लेबरर्स के सप्लाई का प्रॉब्लम रहेगा, और जो हमारी इनकम है उसमें भी जो 100% हम प्राप्ति करते थे अब 60% ही होगा, 40% कमी हो जाएगी, हमारे ट्रेड की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जो आज अनलॉक की स्थिति होने के बाद ये प्रैक्टिकल अनुभव में आ रही है। इन परिस्थितियों को देखकर प्रैक्टिकल उसको फेस करने के समय में काफी हमारे व्यापारी भाई बहने और उद्योग क्षेत्र के भाई बहने मुश्किलातों का अनुभव कर रहे हैं। और ये आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस सोच से, इस प्रकार के एक डर से संक्रमित होकर भयभीत हो रहे हैं। ये एक ऐसी महामारी आई जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। आज इतना विज्ञान आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, इंफॉर्मेशंस आगे बढ़ी है, इतना सब कुछ होते हुए भी इसको पार करने की, इनका शिकार न बने, उसकी दवाई, उसकी वैक्सीन हमारे पास नहीं। तो ये एक दुनिया के सामने स्पष्ट चित्र आ गया कि संसार के खेल में अचानक कुछ भी हो सकता है। परिस्थितियां कभी भी पूछ कर नहीं आती है, फिर वो परिस्थितियां मानव सर्जित है या प्रकृति सर्जित है। इस महामारी अभी कंप्लीटली कंट्रोल में भी नहीं आई, और आप सब जानते हैं कि कहीं साइक्लोन आए, कहीं बाढ़ आई, कहीं भूचाल हुए, कहीं बिजली गिरी, और उसके कारण भी काफी जनहानि भी हुई और अधिक नुकसान भी हुए। उसमें भी आर्थिक नुकसान भी हुए, व्यापार उद्योग क्षेत्र में, खेती में, कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ। तो ये एक ऐसा समय का दौर महसूस हो रहा है कि जैसे प्रकृति भी, जिसका हम सभी ने स्वार्थवश बहुत दोहन किया, प्रकृति भी जैसे बदला ले रही है, और लंबे काल से जो औद्योगिक विकास के बाद समाज के अंदर भौतिकवाद और भोगवाद फैला, उसके कारण एक इम्बैलेंस जो समाज में क्रिएट हुआ, उस इम्बैलेंस के कारण काफी नक्सलवादी, उग्रवादी, आतंकवादी संसार के अंदर तैयार हुए हैं, जो मानव सर्जित समस्याओं के कारण बन रहे हैं। सत्ता की लालसा, धन की लोलुपता एक ऐसी बीमारी है जो बड़े बड़े देशों की इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही है, उनके पेट नहीं भर रहे हैं, और इसलिए विश्व के नक्शे में आप देखिए आज हर देश दूसरे देश से लड़ रहा है, अपने पड़ोसी देश से लड़ रहा है, हर देश के अंदर अंदर भी कितनी समस्याएं हैं, लग रहा है जैसे पूरा विश्व सुलग रहा है। ऐसे वातावरण में व्यापार और उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बहने भी चिंतित हुए हैं, असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, और एक भय कि एक इतनी मेहनत करके जो हमने अपना बिजनेस चलाया, अपना स्थान बनाया, अपनी इंडस्ट्री को सेटल किया, वो किसी भी कारण से खत्म हो जाता है, सब कुछ हलचल में आ जाता है, मलियामेट हो जाता है। अब क्या किया जाए? अब अनलॉक हुआ है, इंडस्ट्री रन करने की बातें हो रही है, व्यापारी हमारे दुकान खोल के बैठे हैं, पर अभी भी महामारी का भय तो है ही है, और परिस्थितियों का भी भय है, और इन परिस्थितियों के बीच जो नकारात्मक परिबल है वो भी कैसे आतंक मचा रहे हैं या भय और बना रहे हैं। तो जैसे कि एक अनिश्चितता जीवन में महसूस कर रहे हैं, पर अल्टीमेट तो हमें जीना है, उठना है, आगे बढ़ना है, हमें इन परिस्थितियों से हारना नहीं है, हमें जीतना है और सफलता पानी है। और इतिहास बताता है कि कैसे संसार एक जमीन से ऊपर उठा है, अनेकानेक व्यक्तियों के जीवन का इतिहास है, अनुभव है, और उन सबको दुनिया जानती है कि उन्होंने अपनी कैसी एक निम्न कक्षा के साधारण गरीबी की स्थिति से उन्होंने अपने आप को जगाया है, उठाया है, और न सिर्फ आर्थिक रूप से लेकिन उन्होंने समाज को भी बहुत फायदा दिलाया है। मैं तो आप सबकी महिमा गाऊंगी कि आप सबने दैनिक आवश्यकताओं से लेकर सुख और सुविधा के अनेक साधन बनाकर दिए हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है, और देश के विकास में अपना बहुत ही योगदान किया है। समाज आपकी इन सेवाओं का कदर करती है, और इसलिए ही विश्वविद्यालय ने भी समझा कि समाज का ऐसा अमूल्य वर्ग, देश का बैकबोन जिसको कहा जाता है, ऐसे व्यापार और उद्योग क्षेत्र के हमारे भाई बहनों में तनाव हो, भय हो, चिंता हो, ये योग्य नहीं है, और हमें कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें इन बातों में मददगार बनना चाहिए। इसी लक्ष्य से ही इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, और जो भी आप सब ऑनलाइन जुड़े हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत भी करती हूँ, और कुछ आध्यात्मिकता की दृष्टि से मैं आपके सामने विचार रखना चाहती हूँ कि अगर हम देखें कि मानव जीवन पहले बहुत कम साधनों में कुदरत की गोद में चलता था, और व्यक्ति संतुष्टता, प्रेम, आपसी सहयोग की भावना आदि का भी अनुभव करते थे। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं जीवन की पूरी होती थी, जैसा कहा गया है कि मदर अर्थ है सफिशियंट फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। तो जब से हम नीड से ग्रीड में चले गए हैं, तब से हम ज्यादा दिन रात प्रवृत्ति करने लगे हैं। हमने जीवन से भी व्यापार को अधिक समझ लिया है और इसलिए बस आर्थिक उन्नति को ही महत्व देकर हम चल रहे हैं। भौतिकवाद भोगवाद जो फैला है उसके पीछे एक औद्योगिक विकास भी हम उसको कारण कह सकते हैं। और जब ग्रीड में हम जाते हैं तो इसका कोई अंत नहीं है कि हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। जो आवश्यक हम प्राप्त करते और उससे संतुष्ट रहने के बजाय और अधिक और अधिक और अधिक हम इच्छाओं के वश दौड़ते रहते हैं, तो एक बैलेंस जीवन में नहीं रहा है। हम इतने दिन रात बिजनेस में इंडस्ट्री में फोकस्ड हो गए हैं कि हम परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं। पारिवारिक भी असंतुष्टता कई बार बनी रहती है और आप दिन रात मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, साधन सुविधाएं बनाते हैं परिवार के लिए, परंतु इंसान को केवल साधन नहीं चाहिए, उसको तो प्यार भी चाहिए, साथ भी चाहिए, आपका समय चाहिए। वो नहीं मिलता है तो पारिवारिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। परिवार और व्यापार को देखने में खुद को तो भूल ही जाते हैं, अपनी एम्पावरमेंट का कोई हम ख्याल नहीं रखते हैं, ना अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उसके लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, और आत्मकल्याण सेल्फ डेवलपमेंट का तो सवाल ही नहीं है। आज महामारी के परिणाम रूप ये दो बातें ही तो सामने आई है कि जिन्हों में फिजिकल इम्यूनिटी है वो इस बीमारी का शिकार नहीं हुए। कुछ दायकों से फिजिकल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस तो आई है, परंतु चाहे एक्सरसाइज करते भी चाहे वॉक करते भी मन सदा हमने एंगेज रखा उन्हीं विचारों में, उन्हीं धंधों की बातों में, उन्हीं फोन और लेनदेन की बातों में, जिसके कारण अगर कुछ भी ऐसी आवश्यकता हुई तो हम तुरंत फिजिकल हेल्थ के लिए जो करना है वो पोस्टपोन कर देते, उसका टाइम कट कर देते, और इम्पोर्टेंस जो है वो हमने ज्यादा आर्थिक बातों को दिया, व्यापार धंधे को उस अर्थ में ज्यादा हमने महत्व दिया। और आज जो दूसरी बात लोगों के सामने आई है कि कईयों के पास बहुत कुछ कमाया हुआ है, बहुत धन जमा किया हुआ है और फिजिकली भी हेल्दी है, वो बीमारी के शिकार नहीं हुए, लेकिन भय से इतने संक्रमित हो गए, इतने चिंतित हो गए और घर में बैठे हुए, क्योंकि उनको मन से आनंद प्राप्त करना, अपने आप को एम्पावर रखना, कोई भी बात में कंफ्यूज नहीं होना, चेंज को एडॉप्ट करना, परिस्थितियों के बीच भी अपना मार्ग निकाल लेना, ये सब चीजें न कर सकने के कारण कितने लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए, भयभीत हो गए, कई आत्महत्या के केसेस बने। तो ये सब क्या बताता है कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जिन्हों में नहीं है वो फिजिकली पावरफुल होते हुए भी टेंस हो गए, भयभीत हो गए, चिंतित हो गए, डिप्रेस हो गए, रिएक्टिव हो गए, फिजिकल इम्यूनिटी नहीं तो शिकार हो गए। तो ये चीजें जब हम ज्यादा बिजनेस माइंडेड बन जाते हैं, एक है प्रोफेशन करना पर बुद्धि को व्यापारी नहीं बनाना, लेकिन हमने बिजनेस को लाइफ से भी अधिक समझ लिया और आर्थिक उपार्जन को ही सब कुछ लाभ समझ लिया और आध्यात्मिकता को सही रूप से स्थान नहीं दिया, तो परिस्थितियां हम पर आज हावी हो गई है। नुकसान हर किसी को हुआ है, संस्थाओं को भी हुआ है। ब्रह्मा कुमारीज भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे 10,000 से अधिक केंद्र, उपकेंद्र और हमारी पाठशालाएं चल रही हैं, हमारे लाखों भाई बहने जुड़े हुए हैं, उन सब के सामने भी ये बातें आई है, उन सब के सामने भी आर्थिक बातें भी आई है, हर प्रकार की बातें आई हैं, परंतु नियमित रूप से आध्यात्मिकता का अभ्यास करने के कारण हम भय के शिकार नहीं हुए, हिम्मत रख पाए हैं, अपने आप में धीरज रख पाए हैं और अपने आप में आत्मविश्वास रख पाए हैं कि परिस्थिति तो जीवन में आती ही है, हमें सहन भी करनी होती है और पार भी करनी होती है। हमें यहाँ आध्यात्मिकता मदद करती है। आध्यात्मिक ज्ञान का एक सत्य हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां परिवर्तनशील है, न सुख की स्थिति सदा रही है न दुख की स्थिति सदा रही है, जो आया है सो जाएगा भी, आज नहीं कल, अभी नहीं तो बाद में ये बदल जाएगा, ये संसार के खेल का नियम है। हम कहते ही है ना कि संसार का खेल हार जीत का बना हुआ है, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि का बना हुआ है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, परिस्थिति परिवर्तनशील है, तो क्यों नहीं हम अपनी आत्मस्थिति, अपनी मनोस्थिति हम स्थिर, शांत, एकाग्र, मजबूत रखें। पर वो ऐसे ही तो नहीं बनेगी, जैसे फिजिकल इम्यूनिटी बनाने के लिए आप हेल्दी डाइट लेते हैं, दिनचर्या मेंटेन करते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्वालिटी इनटेक करने से, हवा पानी खुराक क्वालिटी लेने से वो एनर्जी बनती है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी ऐसे ही भक्ति भजन कर लेने से, पूजा पाठ कर लेने से, सिर्फ नाम स्मरण कर लेने से या फिजिकल एक्सरसाइज योग कर लेने से तो नहीं आएगा ना। उसके लिए हमें भी अपने विचारों को, वाणी को, कर्म को सकारात्मक बनाना होगा, तो हमारे में समय पर हिम्मत रहेगी, धीरज रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। और योग के माध्यम से जब हम उस परम शक्ति परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमारा एम्पावरमेंट होता है। योग में हम रटते नहीं हैं, जपते नहीं हैं, सिर्फ श्वास को, थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, पर हम उस परम परमात्मा पिता से जुड़कर अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करते हैं, एम्पावर करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, तो मन वचन कर्म भी सकारात्मक होने से हमारे में शक्ति आती है। और ये आपने हमारे बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना भी होगा कि हमने किसी का बुरा किया नहीं है, हमारा बुरा हो नहीं सकता, ये हिम्मत उन्होंने रहती थी। और आप में से भी ऐसे कई व्यापारियों का और उनके बाप दादा का अनुभव होगा कि कहां रस्सी लोटा लेके अपने मूल गांव से निकले थे, किस किस प्रांत में गए और कैसी कैसी मेहनत करके वहां की रहनी करनी सीख के, वहां की भाषा सीख के और हिम्मत से आगे बढ़े, आज वेल सेट हुए हैं। तो देखिए, परिस्थिति उस जमाने में अलग होती थी, आज इस रूप में है। परंतु अगर हम सकारात्मक रहे, भगवान का साथ लें, भाग्य हमारे साथ है और हम फिर से रचनात्मक रूप से और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, तो जरूर फिर से वो सुवर्ण दिन व्यापार और उद्योग क्षेत्र में आएंगे। हम सबको मिल करके हिम्मत रखना है, उगना है। हमारे अनेक गरीब और जो श्रमिक है और स्किल्स वाले हैं, जो हमारे पर आधारित है, जिनके सहयोग से ही हम आगे बढ़े हैं, हमें उनको भी उठाना है, उनको भी एम्पावर करना है और हमें देश को आगे बढ़ाना है। तो पुनः मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और शुभकामना रखती हूँ कि आप इस ई कॉन्फ्रेंस से पूरा ही आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। ओम शांति।
शुक्रिया दीदी आपका, आपने बहुत ही सुंदर बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं कि कैसे हम भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हिम्मत और साहस से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सचमुच हिम्मत की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हिम्मत ना हो तब तक क्या देश आजाद हो पाया होता, हम सोच सकते हैं। यदि देशवासी भयभीत रहते, डरे हुए होते और हिम्मत से आजादी के लिए कदम ना बढ़ाते तो शायद आज भी देश गुलाम ही होता। आज स्वतंत्रता दिवस है मित्रों, स्वतंत्रता दिवस की भी आप सभी को ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ही एक सुंदर सा गीत लेकर हमारे बीच आ रही हैं डॉक्टर दामिनी जी, कि कैसे हम अपने मन को आजाद करें, बहुत सारी जो अवगुण कमी और कमजोरियां हमारे मन में घर कर गई हैं उनसे इस सुंदर भाव को लेकर आ रही डॉक्टर दामिनी जी।
जीते जी पंख में होवे कमल फिर भी, वो गाए आजादी के
शुक्रिया दामिनी जी आपका इस सुंदर गीत के लिए। सचमुच आजादी हमें बाहर तो मिल गई है, लेकिन मन में जो कुविचार हैं, मन में जो दुर्भावनाएं हैं या मन में जो अवगुण हैं, उनसे भी आजादी की आज परम आवश्यकता है। और कई बार यही जो अंदर की विकृतियां हैं वो कारण बन जाती हैं हमारे जीवन को स्ट्रेसफुल बनाने की, यही कारण बन जाती हैं हमारे जीवन को हमसे सफलता को दूर ले जाने की, यही कारण बन जाती हैं हमें हमारे अपनों से दूर करने की। तो क्यों ना इन सब से भी हम आजादी प्राप्त करें। और परिस्थितियां आज जैसी भी हैं, उन परिस्थितियों में हम अपने आप को बेहतर साबित करें, इसके लिए बहुत जरूरी है आज कि हम तन और मन दोनों को ही बहुत शक्तिशाली बनाएं। इसीलिए एक सुंदर सा विषय लेकर के हमारे बीच अब आ रहे हैं यंग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। बचपन से ही आप ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अपने मेडिकल करियर में आपने अनेक गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और आपको 2006 में यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया है। आपका आज का विषय है हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर कॉम्बैटिंग स्ट्रेस।
ओम शांति। दोस्तों, आज के समय में अगर हम देखें कि एक शब्द जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, अलग अलग किताबों में उसे ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, वो शब्द है इम्यूनिटी। दोस्तों, इम्यूनिटी एक बहुत ही यूनिक शब्द है और ये हमारे शरीर की बीमारी को रोकने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। अक्सर लोग इसे इस शब्द से ही रिलेट करते हैं। अगर हम इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो जब आज एक बहुत बड़ी बीमारी ने संपूर्ण विश्व पर इकट्ठे प्रहार किया है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका शरीर इस बीमारी से बचा रहे, और कभी भूले भटके गलती से बीमारी हो भी जाती है तो उसके शरीर के अंदर इतनी शक्ति हो कि वो इस बीमारी का सामना करके इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। लेकिन आज हम दोस्तों इस इम्यूनिटी को एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखेंगे। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने शरीर की इम्यूनिटी ही सामने आती है और आवश्यक है, जरूरी है कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि इम्यूनिटी का एक और पहलू हमारे सामने, हम उसको समझें। दोस्तों, हम जब भी अपने बारे में बात करते हैं तो हम ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं, अर्थात एक शरीर और उसके अंदर रहने वाली एक चेतन शक्ति जिसको हम आत्मा या जिसको हम मन बुद्धि और संस्कार के रूप से जानते हैं। जब भी कोई बीमारी आती है तो हमारे शरीर पर तो प्रभाव करती है लेकिन उसके साथ साथ हमारी आत्मा यानी हमारे मन के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव करती है। और आज के समय को ही आप देखें, आज जब हम बीमारी की बात करते हैं तो बीमारी अपने साथ क्या फीलिंग्स लेकर आई है। बीमारी कीटाणु तो लाई है, शरीर को तो अफेक्ट करती है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे मन पर भी बहुत गहरा असर डालती है। डर, चिंता, भय, कल क्या होगा, अनसर्टेनिटी, ये नेचुरल फीलिंग्स हैं जो किसी भी बीमारी के साथ एसोसिएटेड होती है। और जहां एक बीमारी शायद 100 लोगों में से आधे एक दो लोगों को ही प्रभावित करे, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड है डर, चिंता और भय, ये आज 90-95% लोगों को ऑलरेडी प्रभावित और इन्फ्लुएंस कर चुका है। और अगर साइंटिफिक रूप से इसको देखें तो यदि किसी व्यक्ति के मन में भय, चिंता और डर जैसी फीलिंग्स हैं तो उसकी इम्यूनिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उसके अंदर, शरीर के अंदर जो बीमारी को रोकने की जो शक्ति है, उसका सामना करने की शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इम्यूनिटी का फोकस ना केवल हमारे शरीर पर होना चाहिए लेकिन मन की इम्यूनिटी भी हमको बढ़ानी पड़ेगी। और आज इसी के बारे में हम बहुत सुंदर रूप से एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट जो बेस है, जो आधार स्तंभ है इम्यूनिटी बढ़ाने के, वो है प्रॉपर डाइट, दूसरा है प्रॉपर एक्सरसाइज और तीसरा है प्रॉपर रेस्ट। बहुत बहुत जरूरी है कि आज हम प्रॉपर भोजन खाएं। आज देखें कि हर व्यक्ति भाग रहा है, कोई काढ़ा पीता है, कोई अच्छा दूध हल्दी का पीता है, कोई अलग अलग दवाइयां ले रहा है, कैप्सूल ले रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के लड्डू भी ले रहा है, कोई कोई किताबें पढ़ के किसी से पूछ कर कोई और मेडिसिन ले रहा है। और ध्येय क्या है कि शरीर की इम्यूनिटी को हम लोग बढ़ाएं, शरीर की बीमारी को रोकने की जो शक्ति है उसको हम लोग बढ़ाएं। और फिर भी ये होते हुए फिर भी बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार लोग एक्सरसाइज भी करते हैं और आराम भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां शरीर को उचित भोजन देने की आवश्यक है उसी प्रकार मन को भी उचित भोजन देना बहुत जरूरी है। शरीर की एक्सरसाइज के साथ साथ मन की एक्सरसाइज, आत्मा की एक्सरसाइज करना भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इसी प्रकार दोस्तों, जब हम आराम करते हैं तो शरीर के आराम के साथ साथ मन को भी आराम, मन को भी सुकून देना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम इन्हीं तीनों चीजों को, तीनों पहलुओं को अलग अलग रूप से समझते हैं। दोस्तों, भोजन के बारे में यदि मैं आपको कुछ बताऊं तो भोजन स्वस्थ और अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चार या पांच बातें आप जरूर अपने भोजन में ध्यान रखें। पहली जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो है, हमारे भोजन में उचित मात्रा, एक्स्ट्रा नहीं, उचित मात्रा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। नेचुरल फ्रूट्स और नेचुरल वेजिटेबल्स जितना हम खाएं इनको, वो हमारे शरीर को नेचुरल विटामिंस और हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्निफिकेंटली बेटर करता है। तो रोज खाने से पहले, खाने के साथ या बाद में नहीं, खाने से आधे घंटे पहले, एटलीस्ट 15 मिनट पहले आप फल और फूलों का उपयोग जरूर करें, वेजिटेबल्स का उपयोग जरूर करें, सलाद जरूर खाएं। यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा अचार, एक्स्ट्रा पापड़, ऐसी कोई भी चीजें यदि हम उपयोग करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ऑयल्स और घी यदि हम खाएं या ना खाएं, ये लोग आप पूछते हैं तो जरूर खाइए, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड जो है उसका हमें ध्यान रखना है। तेल आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन तेलों को आप नित्य उनको रोटेट करें, हर 10 से 15 दिन में आप अपने घर के ऑयल्स को रोटेट करें। इसी प्रकार घी यदि आप खाना चाहते हैं तो आप जरूर लें, आधा चम्मच एक चम्मच जरूर लें, लेकिन रोज सब चीजों के अंदर घी का अत्यधिक उपयोग करना ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत हानिकारक हो जाता है। नेचुरली जो हम लोग घर में कर्ड यानी दही बनाते हैं, छाछ लेते हैं, मठा बनाते हैं, ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। इनका जितना मैक्सिमम आप उपयोग करेंगे वो बेनिफिट आपको देगा। दोस्तों, भोजन के अंदर एक एंटिटी होती है जिसको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं, यानी तला हुआ भोजन। कई बार हम लोग भोजन को बनाते हैं और बनाकर उसको आधा तल के रख देते हैं। आप मार्केट भी जाते होंगे, कुछ कुछ आपको पैक्ड ऐसा सामान मिलता है जो कि आधा तला हुआ होता है। कभी कभी कुछ लोग बाजार भी चले जाते हैं और सामने देखते हैं कि भाई आधा पका हुआ कुछ समोसा रखा है और वो खाना चाहते हैं, उसी समोसे को तलकर वो खा लेते हैं। दोस्तों, ये अपने भोजन में इन चीजों का उपयोग करना, आधा तल के एक चीज को दोबारा तलना, ये हमारे शरीर के लिए एक पॉइजन का रूप दे देता है। ये ट्रांस फैट्स रिलीज करता है जो भोजन को टेस्टी तो बनाते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। इसीलिए दोस्तों, बहुत आवश्यक है कि भोजन को हम संयमता से खाएं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्का भोजन जो है हम आफ्टरनून में लें और बहुत ही हल्का भोजन हम लोग नाइट में लें, तो ये एक ग्रेडेड पिरामिड की तरह हमारी डाइट होनी चाहिए। कुछ तीन या चार बातें जो मैं आपको नेचुरल हैबिट्स के रूप में बताना चाहूंगा वो ये है कि जरूर आप रात का भोजन 9 बजे के बाद ना करें, ये बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत जरूरी है कि जितना लेट हम भोजन करेंगे वो हमारे लिए बहुत बहुत हानिकारक होगा। मैदा और ऐसी चीजों का उपयोग करना जिनमें फाइबर्स नहीं है, ये हमारे शरीर को बहुत बहुत नुकसान देता है, क्योंकि ये हमारी आंतड़ियों में बहुत दिनों तक फंसा रहता है, 2 से 3 दिन तक फंसा रहता है और ये शुगर को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है और पेट को भी खराब करता है। तो कभी कभी आप सब चीजों को ले सकते हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली यानी मेन रूप से, मूल रूप से देखा जाए तो प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको आज बताना चाहता कि साइंस में अत्यधिक स्टडी आ चुकी है, बहुत पावरफुल स्टडी आ चुकी है जो हमारे सामने स्पष्ट हमको करती है कि प्लांट बेस्ड डाइट अगर हम लेते हैं रादर देन एनिमल प्रोटीन बेस्ड डाइट, वो 40% मॉर्टेलिटी यानी डेथ के चांसेस को डिक्रीज कर देती है। इतनी पावरफुल नेचुरल वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट हमारे शरीर को बेनिफिट देती है। तो ये भोजन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम लें वो हमको बहुत बेनिफिट देगा। लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और जो आप लेना चाहें काढ़ा है, ऐसी चीजों का तो उपयोग आप समय अनुसार जरूर करें, लेकिन इन सब चीजों को आप बैलेंस रूप से दें तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती रहे। पानी का भी 2 से 2.5 लीटर नित्य उपयोग करना ये बहुत आवश्यक है, कंज्यूम करना ये बहुत आवश्यक है। अगर हार्ट के आप मरीज हैं या कोई ऐसी बीमारी है कि हार्ट की पंपिंग कम है तो पानी की मात्रा को हमको कम उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये भोजन की जब हम बात करते हैं तो शरीर को तो हमने अच्छा भोजन खिला दिया, लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस आई है जिसको हम लोग न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं, और वो ये कहती है कि आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, बहुत पावरफुल भोजन कर रहे हैं, लेकिन उस पावरफुल भोजन को आप अच्छे मन से स्वीकार नहीं करते, आप उसके अंदर जो एनर्जी देते हैं वो पावरफुल नहीं है। तो यदि हमारे मन के संकल्प या मन की शक्ति उस भोजन के प्रति सकारात्मक और पावरफुल नहीं है तो वो भोजन शक्तिहीन हो जाता है, या यूं कहें कि वो भोजन हमारे शरीर को कोई इम्यूनिटी प्रदान नहीं करता। तो आप सोचिए कि एक तरफ तो हम लोग सब चीजें प्रॉपर और अच्छा अपने शरीर को दे रहे हैं और दूसरी तरफ मन से भय, चिंता और डर की वाइब्रेशंस हम भोजन में डाल रहे हैं, तो क्या वो भोजन हमको शक्ति देगा? न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहती है कि वो भोजन हमारे लिए शक्तिहीन है। तभी यथार्थ इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी, अर्थात संकल्पों के द्वारा अपने भोजन को और अपने पानी को एनर्जाइज करना। और ये साइंस आज इसको स्पष्ट कर चुकी है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने यही देखा कि यदि हम पानी को पीने से पहले केवल कुछ सेकेंड का, कुछ पल का हम लोग विराम लेते हैं और मन से ये संकल्प हम उत्पन्न करते हैं कि ये पानी मेरे तन और मन को शक्तिशाली और शांत बनाएगा, जब हम भोजन के लिए ये संकल्प अंदर से उत्पन्न करते हैं, उसको ये वाइब्रेशंस देते हैं, ये पावरफुल संकल्प देते हैं कि ये भोजन जो है मेरे तन और मन दोनों को सुकून और शांति देगा, तो वो भोजन के अंदर शक्ति आती है। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा वाटर की ड्रॉपलेट्स को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव इमोशंस जब हम भोजन को देते हैं या पानी को देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। इसी प्रकार जब चावल के दानों को दो जगह रखा गया, एक ही जगह से लेके, और एक को हेट की फीलिंग दी गई और एक को लव की फीलिंग दी गई, तो उन्होंने देखा कि जिस भोजन को लव की फीलिंग दी गई उसके अंदर कोई भी फंगस नहीं लगी और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। अभी दोस्तों आज आवश्यक है कि इम्यूनिटी 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 हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी के लिए सेल्फ फोकस और मन की तरफ ध्यान देना ये बहुत आवश्यक है। तो आज से हम क्या करेंगे, आज से जब भी हम भोजन खाएंगे, पानी पिएंगे, तो जैसे हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में जाते हैं, हमको प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद खाते हम क्या कहते हैं, होता वो साधारण सा है, कोई स्पेशल नहीं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि भाई बड़े मन को सुकून मिला। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशंस होती है। हम लोग चरणामृत कई बार यूज करते हैं, क्या है चरणामृत, पानी ही तो है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पानी को हम लोग ऐसे ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके अपने मुंह में लेके और अपने सर पर भी रखते हैं ताकि वो हमको एनर्जी दे, क्योंकि वाइब्रेशंस जो है हमारे मन के संकल्प हैं वो हमारे भोजन और पानी को शक्तिशाली बनाते हैं। तो यदि हम यथार्थ इम्यूनिटी अपने शरीर के लिए लाना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि उचित और अच्छा भोजन भी हम लोग खाएं, प्रॉपर भोजन भी खाएं, गरिष्ठ नहीं लेकिन शक्तिशाली भोजन खाएं और उसके साथ साथ उसको शक्तिशाली बनाएं अपने संकल्पों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा। आप केवल एक दिन अपने घर में इसको करके देखिए, मैं आपको 10 दिन के लिए एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, केवल आज जब आप इस बात को सुन रहे हैं एक दिन के लिए अपने घर में शांति से भोजन बनाइए, शांति से भोजन खाइए और परमात्मा की याद में भोजन बनाइए और परमात्मा की याद में भोजन खाइए। आप देखिए कि भोजन और पानी की वाइब्रेशंस कितनी पावरफुल हो जाती है, वो कितना शक्तिशाली हो जाता है। आप खाएंगे भी ना तो आपको बहुत अच्छी सुकून की अनुभूति होगी और आपको बहुत अच्छी रात को नींद आएगी, आप कहेंगे कि बहुत आनंद हो जाएगा। ये हमारे नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक बहुत सुंदर तरीका है दोस्तों। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में एक्सरसाइज की बात करते हैं, हमारे स्वस्थ जीवन का जो दूसरा पावरफुल आधार स्तंभ है वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जो है हर व्यक्ति के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा कि यदि हम लोग अपने जीवन में रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आप यूं समझिए कि आप अपनी उम्र में रोज 1 घंटा हेल्दी जोड़ रहे हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज और 1 घंटा आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। रोज 30 से 40 मिनट केवल वॉक करना, आपका स्वास्थ्य किसी भी प्रकार का हो, आप कुछ भी करते हो, चाहे आप मोटे हो, चाहे आप पतले हो, चाहे आप कम उम्र के हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपनी बीमारी का ध्यान रखते हुए चलना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि ब्रेन लव्स द एक्सरसाइज, इट्स लाइक अ जिम। ये बहुत बहुत शक्ति हमारे शरीर को, हमारे मन को नेचुरल एक्सरसाइज देता है। जो बच्चे रोज एक्सरसाइज करते हैं उनकी अटेंशन पावर, उनका फोकस, उनकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। आप देखिए, पहले हम लोग अपने बचपन में क्या करते थे, ये नेचुरल टेलीविजन और ये वीडियो गेम्स वगैरह तो कुछ भी नहीं होते थे। आजकल मोबाइल पर बच्चे लगे रहते हैं, बड़े भी लगे रहते हैं, लेकिन पूरे समय इसमें हमारी एनर्जी निकल जाती है और हम जो हमारी प्रकृति है, जो सौंदर्य प्रकृति का है, जो नेचर ने हमको इतने सुंदर एनवायरमेंट दिया है, उससे हम वंचित रह जाते हैं, उससे हम दूर रह जाते हैं। हम नेचुरल जिम्स की तरफ भी ना जाकर हम लोग आज आर्टिफिशियल जिम्स की तरफ जाते हैं, घर में जिम बनाते हैं। तो मेरा तो आपसे ये अनुरोध रहेगा कि बाहर निकलिए, नेचर के पास जाइए, प्रोटेक्शन लेते हुए, आज के समय अनुसार नेचुरल प्रोटेक्शन लेते हुए मूव करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, पेट की आंतड़ियों की बीमारियां, वायरल इलनेसेस, ये सब बीमारियां सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावरफुल हो जाती है। यदि हम देखें तो जैसे ही हम मूव करते हैं तो हमारा हार्ट सिग्निफिकेंटली ब्लड पंप करता है, हर ऑर्गन की तरफ ब्लड सिग्निफिकेंटली ज्यादा जाता है, ब्रेन की तरफ भी ज्यादा जाता है। तो ब्रेन के जो पॉजिटिव न्यूरॉन्स है, जो ग्रे मैटर है, वो बढ़ जाता है। और जैसे ही ग्रे मैटर हमारा ब्रेन का बढ़ता है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन पावर जो है, हमारी जजमेंटल पावर जो है, वो पावरफुल हो जाती है, हमारी लर्निंग पावरफुल हो जाती है। और ये भी कहा गया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो गाबा हार्मोन जो है वो हमारे लिए एक कामिंग हार्मोन का काम करता है, हमको शांत रखता है, उस हार्मोन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। आज साइंस ये कहती है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं उम्र में, तो हमारे न्यूरॉन्स की डेथ होती जाती है, यानी ब्रेन की जो नर्व सेल्स है वो डाई आउट होते जाते हैं। तो जब हम मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोट्रोपिक फैक्टर जो है BDNF, ये भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है और न्यूरॉन्स की प्रोडक्शन हमारे ब्रेन में बढ़ जाती है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी जो मैं देख रहा था, वो ये बताती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको कैसी फीलिंग आती है, हमको अच्छा लगता है, हमको अपने आप से तनाव मुक्त हम फील करते हैं। क्यों? क्योंकि एंडोर्फिन्स और गाबापेंटिन ऐसे जो हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन्स बढ़ने के कारण, डोपामाइन बढ़ने के कारण, हमारे जो ब्रेन के हैप्पी सेंटर्स हैं, जो खुश रखने वाले सेंटर्स हैं, वो हाइपर एक्साइट हो जाते हैं, जो बढ़ जाते हैं। तो हर प्रकार का बेनिफिट जो है एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन को नेचुरली मिलता है, हर अंग को नेचुरली मिलता है। तो बहुत आवश्यक है कि रोज आप मूव करिए। यदि किसी कारण आप बाहर नहीं निकल सकते तो घर में मूव करिए। घूमना हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बहुत आवश्यक है। ये हमको बीमारियों से रहित बनाता है। आज अगर हम आपको बताएं तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट अटैक की बीमारी के साथ साथ हाइपरटेंशन, उसकी भी कंट्रोल, रोकथाम के अंदर सिग्निफिकेंटली बेनिफिट मिलता है। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हम मैं स्टडी देख रहा था, उसमें यह बताया गया कि इस कोरोना काल में जहां एक वायरस ने संपूर्ण लोगों पर बहुत ही गहरे रूप से प्रहार किया है, तो कुछ लोग आप देख रहे हैं कि जो 90 ईयर्स के हैं, 100 ईयर्स के हैं, 80 ईयर्स के हैं, वो भी इस बीमारी से उभरकर बहुत सहज रूप से बाहर। और जब उनको स्टडी किया गया तो वो दिखाते हैं कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव लाइफस्टाइल था, पैसिव लाइफस्टाइल नहीं। वो लोग नित्य एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, और उसको करने के कारण उनके शरीर और मन की इम्यूनिटी बहुत बहुत पावरफुल है, यानी वो उस इन्फेक्शन को बहुत सहज रूप से डील कर सकते हैं। तो आज शरीर के लिए एक्सरसाइज बहुत बहुत आवश्यक है। रोज मूव करिए 30 से 40 मिनट, हफ्ते में 5 से 6 दिन। एक हफ्ते में यदि आप एक्युमुलेट करते हैं एक्सरसाइज को 150 मिनट से 160 मिनट ये आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन नियम बनाना, नियमित रखना, ये बहुत जरूरी है। रोज एक्सरसाइज करना ये बहुत हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, जैसे आज हम लोग अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, इसी तरह आज हम कुछ अपने मन के लिए भी एक्सरसाइज करें। आप देखो, हमारा मन रोज संकल्प करता रहता है, एक के बाद एक फोर्स करता रहता है, लेकिन आज हम देखें कि एक मानव जो है अपने ही द्वारा निर्मित एक जाल में फंस चुका है। आप एक मोबाइल फोन को देखें, एक टेलीविजन को देखें, एक कंप्यूटर को देखें, सवेरे से उठकर शाम तक हम लोगों को यह अनुभव होता है कि जैसे आज हम लोग चेंड हैं टेक्नोलॉजीज के द्वारा, हमारा जीवन जो है कंप्लीटली टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। और आज ये बताया गया है कि एक मानव यदि एक दिन में उसका स्क्रीन टाइम देखा जाए तो 5 से 6 से 8 घंटे तक चला जाता है, जो कि एवरेज 1 से 2 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए। और ये हमारे ब्रेन पर, हमारे रिलेशंस पर, हमारे प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पर, हमारे एंग्जाइटी लेवल पर, साइकोलॉजिकल स्टेटस पर ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी बहुत बहुत गहरा प्रभाव डाल रही है। आज हम लोग दर्द को कंज्यूम करते हैं, लगातार नेगेटिव इंफॉर्मेशन आप चैनल्स को खोले, व्हाट्सएप को देखे, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप सोशल मीडिया देखे, हर कोई मैसेजिंग में बिजी है सवेरे से लेकर शाम तक। और 90-95% जो हमारे मैसेजेस हैं वो यूजलेस, वेस्ट और नेगेटिव मैसेज। इस एनर्जी को हम लोग अपने मन में एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद इसी को हम लोग बाकी उस फॉरवर्ड बटन को दबा के हम लोग दूसरों को भी ये ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्तों, आज यदि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक एक्सरसाइज और करें कि रोज 1440 मिनट हमको मिलते हैं और उसमें से केवल 160 मिनट रोज अपने लिए निकालें और उन मिनट्स को हम लोग लेबल करें ई फ्री मिनट्स। रात को सोते हुए 1 घंटा, जब हम सोने से पहले 1 घंटा हम लोग मोबाइल, टेलीविजन और किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया का उपयोग ना करें, उसको ऑफ कर दें और कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा लिखें, कुछ अच्छा सुने। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, रात को सोने जाएंगे तो हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड कनेक्टेड होगा, हमको नींद बहुत पावरफुल होगी। इसी प्रकार जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक गुड मॉर्निंग ना करें, स्वयं से बात करें, परमात्मा से बात करें, मेडिटेशन का अभ्यास, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, कुछ अच्छी बातों को लिखें, इस तरह अपनी दिनचर्या को आरंभ करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं, जैसे अपने मन को हम लोग फ्यूल देते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, जब हम पूरे दिन कार्य करते हैं और शाम को घर पर आते हैं, अपने परिवार के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो जब भी हम बातें करें तो एक घर में अनेक घर ना बनाए, अपने मोबाइल को शट ऑफ करके उनसे आंखों में आंखें डालकर प्यार से बातें करें, उनकी बातों को सुने, उनके बच्चों की बातों को, हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे की बातों को, माँ बाप की बातों को हम लोग समझें। ये हमारे संबंधों को सुंदर बनाता है, हमारे संबंधों को शक्तिशाली बनाता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये 160 मिनट हमारे मन को और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को पावरफुल तरीके से बढ़ा देते हैं। पूरे दिन उसी मोबाइल के कंट्रोल में रहने से हम अपने मन का संयम और शरीर का बैलेंस संपूर्ण रूप से खो बैठते हैं। इसको हम लोग डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं, कभी कभी अनप्लग होना कह देते हैं, कहते हैं ना हम लोग कई बार कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं थोड़ा शांति से रहना चाहता हूँ। तो बहुत आवश्यक है इस शांति को सहज रूप से इस डिजिटल टेक्नोलॉजीज को ऑफ करके अपने आप से भी बात करें। आपको अच्छा लगेगा कि भाई हमें भी अपने लिए समय मिलता है दोस्तों। इसी प्रकार तीसरा जो हमारे जीवन का आधार स्तंभ माना गया है वो है नींद, यानी आराम। हमारे शरीर के लिए आराम और स्लीप बहुत आवश्यक है। मूलतः देखा जाए तो 6 से 8 घंटे की स्लीप हमारे शरीर को चाहिए होती है। और जो व्यक्ति यथार्थ रूप से नींद को लेता है तो हमारे ब्रेन के हर पार्ट को, चाहे उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहें, चाहे उसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहें, चाहे पैराइटल लोब कहें, चाहे टेम्पोरल लोब कहें, चाहे ऑक्सीपिटल लोब कहें, हर लोब की एक अपनी पावर है। सोचने की पावर, समझने की पावर, डिसीजन लेने की पावर, इमोशनल कंट्रोल लेने की पावर, इसी तरह जजमेंट्स की पावर, मेमोरी की पावर, हर पावर की, बोलने की जो शक्ति है, उसको करने की जो शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, हर पावर के ऊपर हमारी नींद का बहुत बहुत गहरा असर। तो इसलिए आपकी नींद हाई क्वालिटी नींद होनी चाहिए। रात को सोए तो लाइट ऑफ, कोई कॉफी, कोई अगेन डिजिटल, जैसे मैंने आपको बताया था, टेक्नोलॉजी को हम ऑफ करें 1 से 2 घंटा और शांति से हम लोग परमात्मा की याद में सोए, अच्छे संकल्पों से सोए, पूरे दिन का खाता एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह लूज करके सोए। तो इस प्रकार की जब हम नींद लेते हैं वो क्वालिटी नींद हमको आती है तो हमारा शरीर और हमारा मन रिजुवेनेट। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि जैसे हम लोग अपने शरीर को नींद देते हैं लेकिन कभी कभी हमारा मन दुखी है, हमारा मन चिंतित है, तो चाहे आप शरीर को 10 घंटा भी बिस्तर पर लेटा दो तो क्या आपको नींद आएगी? आएगी या नहीं आएगी? नेचुरली आप कहेंगे भाई मैं तो करवटें ही बदलता, या हम उठेंगे तो हम कहेंगे आज हमको आनंद नहीं आया, नींद में वो मजा नहीं आया। और क्यों होता है? क्योंकि नींद की आवश्यकता शरीर से ज्यादा मन को होती है। यूं हम कहें कि आराम की आवश्यकता शरीर से ज्यादा मन को होती है। दोस्तों, आज के समय में अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस बात को और इसके पीछे जो भावना है उसको समझना बहुत आवश्यक है। जहां आज हम लोग अपने घर में क्वारंटाइन है, अपने घर में लॉकडाउन के अंदर है, दोस्तों इसी को अगर हम यथार्थ रूप से समझें तो बहुत जरूरी है कि घर में तो हम लॉकडाउन है लेकिन क्या हमारा मन भी तो लॉक नहीं है? क्या मन को हम लोग क्वारंटाइन में हम डालने की कोशिश करते हैं? मन को क्वारंटाइन में डालना, मन को आराम देना, इमोशनल रेस्ट देना, स्पिरिचुअल रेस्ट देना, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। दोस्तों, आज से 10 से 20 साल पहले जो मोबाइल फोन हम लोग उपयोग करते थे तो मोबाइल फोन केवल बात करने के काम आता था और वो 4 से 5 दिन उसकी बैटरी चलती थी। लेकिन जब हम मोबाइल फोन को हमने स्मार्टफोन में परिवर्तित कर दिया है तो मोबाइल फोन फटाफट डिस्चार्ज हो जाता है और रोज हमको ना केवल 4-5 बार ही चार्ज करना पड़ता है, कई बार पावर बैंक की भी जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार आज हम लोग भी स्मार्ट ह्यूमन बींग्स हैं। पहले हमारी जिंदगी में सुख चैन और शांति होती थी, आराम से बैठते थे, खेतों में बैठते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन आज के लोगों को इस बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। हमको अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में इस चीज का समय ही नहीं मिलता कि हम अपने आप से स्वयं से भी बात करें और आज अपने आप से पूछें कि क्या हम अपने मन को भी सुकून और मन को भी हम कुछ पल आराम दे पाते हैं। वो मन को आराम देना, वो मन को सुकून देना, मन को चार्ज करना, मन को अच्छे संकल्प जनरेट करना सिखाना, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना, यही प्रक्रिया जो है इसको मेडिटेशन कहा जाता है। ये एक लैटिन वर्ड मेडिटेशियो यानी जो हीलिंग है, टू कॉन्टेम्प्लेट, टू थिंक, ये एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। और किसके बारे में सोचेंगे? केवल शरीर के बारे में नहीं लेकिन अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने संस्कारों के बारे में। हमारा एक एक संकल्प हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर हम अपने संकल्पों को, अपनी आत्मा के द्वारा जो उत्पन्न हो रहे संकल्प हैं उनको हम शक्तिशाली बनाते हैं, उनको हम शांति से परिपूर्ण करते हैं, उनको हम प्यार से भरते हैं, उनके अंदर हम लोग खुशी डालते हैं, शक्ति डालते हैं, ज्ञान डालते हैं, पवित्रता डालते हैं, तो ऐसा जो जीवन है, ऐसा जो मन है, वो आनंद की अनुभूति करता है, वो सुख की अनुभूति करता है। आज हमने अपने जीवन में खुशी को हटाकर क्रोध भर दिया है, प्यार को हटाकर हमने अपने जीवन में इरिटेशन को भर दिया है, लोगों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, लोगों के प्रति नेगेटिव भावनाएं, लोगों के प्रति एक्सपेक्टेशंस रखना, उनसे लड़ना, उनकी बातों को ना समझना, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग की फीलिंग रखना, लोग मेरी बात नहीं समझते, मैं उनकी बात नहीं समझता, और ऐसी फीलिंग आने के कारण आज हमारा मन, हमारी आत्मा कमजोर हो चुकी है। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है, एक ऐसी सुंदर एक्सरसाइज है जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। और आप सोचिए कि जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी मस्जिद गाड़ी है लेकिन उस मस्जिद गाड़ी की बैटरी खराब है तो क्या वो चलेगी? वो नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, ये जो हमारी सुंदर गाड़ी है, इस गाड़ी को चलाने वाला जो प्रोसेसर है, जो बैटरी है, वो हमारी आत्मा है। इस तरीके से आप इस रूप को समझे, और जब वो बैटरी, वो प्रोसेसर, वो पावरफुल हो जाता है, उसकी क्लीनिंग हम लोग कर देते हैं, उसको शक्तिशाली संकल्पों से हम लोग भर लेते हैं, उसको प्यार के संकल्पों से भर लेते हैं, स्वयं के लिए भी और हर व्यक्ति, हर आत्मा के लिए भी, अपने संबंधों के अंदर भी, परिवारों के लिए, अपने एनवायरमेंट के लिए, अपने देश के लिए, तो वो जो शक्ति है वो परिवर्तन का एक ज्वार रूप ले लेती है। और यही परिवर्तन हमारे लिए इम्यूनिटी का कार्य करता है, यही परिवर्तन हमारे शरीर और हमारे मन को इम्यून बना लेता है, किसी भी बीमारी से रोकने में हम कामयाब होते हैं, एक औरा की तरह हमारे अंग कार्य करता है।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहित गुप्ता जी, आपने परमात्मा अनुभूति कराई और साथ ही कितनी गहराई से इस सुंदर विषय को स्पष्ट किया है। सचमुच लगता है जिस प्रकार आप मेडिटेशन करा रहे थे कि ये जो शांति है यही वास्तव में हमारा असली खजाना है और इसी के लिए तो हमारा सारा प्रयास है। हम जीवन में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां से इन्हें खरीदा जा सके। हमारे पास स्थूल धन बहुत है, हमारे पास साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन जिस सच्ची खुशी की हमें तलाश है वो कई बार इन चीजों से हमें प्राप्त नहीं होती। क्षणिक रूप से हम आनंदित हो जाते हैं कि मेरे पास ये है ये है ये है, लेकिन मन की बेचैनी को इनसे दूर नहीं किया जा सकता। वास्तव में सच्ची शांति सच्ची खुशी कहीं और है, जिसे हम बाहर ढूंढते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे अंदर ही है। इसीलिए अगला जो हमारा विषय है वो यही है, रिकॉग्नाइजिंग इनर ट्रेजर फॉर पीस एंड हैप्पीनेस। वास्तव में जब हम अपने अंदर जाते हैं, खुद को पहचानते जाते हैं, तो फिर वास्तविक शांति और खुशी हमें प्राप्त होती चली जाती है। इस सुंदर विषय को हम सबके सम्मुख लेकर आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन जी, जो कि सीनियर राजयोगा टीचर हैं और बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग की भी सीनियर फैकल्टी हैं। ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन जी,
ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है आध्यात्मिकता के द्वारा हम वो अंतर के खजानों को पहचाने, जिससे हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव स्वाभाविक रूप में कर सके। जीवन के हर एक पहलू में, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे परिवार में संबंध हो, चाहे कारोबार हो, चाहे समाज के साथ हमारी लेन देन हो, इन सभी पहलू में हम ये खुशी और शांति का अनुभव कैसे करें, इसके लिए हमें जरूर अपने अंतर की ओर, अंतर के जगत की ओर अपने मन को दिशा देना होगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है। ये कहानी है एक सुंदर ओस की बूंद के लिए, ड्यू ड्रॉप। आपको भी ये कहानी पसंद आएगी। और ये ओस की बूंद जैसे ही आकाश से नीचे गिरती है एक बहुत सुंदर पहाड़ पर, और जैसे उसकी यात्रा आरंभ होती है उसको आसपास का वातावरण बहुत नया बहुत अलग लगता है और हर चीज उसे आकर्षित करती है। वहां वो एक बहुत सुंदर फूल को देखती है और ये फूल जो है उसमें बहुत सुंदर रंग है, ये रंग गुलाबी रंग है, और ये ओस की बूंद उसके तरफ आकर्षित हो जाती है। और फिर क्योंकि कहानी है तो बातचीत होती है उनकी आपस में, तो ओस की बूंद उस फूल को पूछती है कि अरे मुझे थोड़ा अपना रंग दे दो। तो वो फूल जो है वो कहता है ठीक है, लेकिन डील होगा, मुझे तुम अपनी थोड़ी सी फ्रेशनेस दे दो। तो फिर वो डील हो जाता है, ओस की बूंद अपनी शुद्धता अपनी फ्रेशनेस थोड़ी दे देती है और थोड़ा सा रंग ले लेती है। और ऐसे आगे उसकी यात्रा और चलती जाती है। अब उसे एक बहुत सुंदर सुगंध आकर्षित करती है और वहां वो देखती है कि एक वृक्ष है जिससे बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। वो उस वृक्ष से बात करती है क्योंकि वो तो सैंडलवुड का वृक्ष है, और वो जैसे ही बातचीत करती हुई कहती है कि थोड़ा सा मुझे अपनी सुगंध दे दो। तो वृक्ष भी उससे बातचीत कर लेता है, कहता है ठीक है मुझे अपनी थोड़ी शुद्धता फ्रेशनेस दे दो। तो फिर से एक्सचेंज होता है, वहां से सुगंध आ जाता है उसकी बूंद के पास और वहां से फ्रेशनेस और शुद्धता चली जाती है। और धीरे धीरे हर चीज उसको आकर्षित करती जाती है, वहां की मिट्टी, और फिर वहां फिर से एक डील हो जाता है, मिट्टी का थोड़ा सा भाग उसके पास आ जाता है और उसकी शुद्धता और उसकी फ्रेशनेस उसके पास चली जाती है। ऐसे धीरे धीरे हर चीज उसे प्रभावित करती आकर्षित करती है और वो अपनी आंतरिक खुशी शुद्धता को पवित्रता को फ्रेशनेस को एक्सचेंज करते करते बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेती है, जो वैसे उसको आकर्षित जरूर करती है शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो ओस की बूंद देखती है कि उसका स्वरूप ही बदल गया। अब वो तो एक मिट्टी का बूंद बन गया और बूंद भी नहीं, बहुत भारीपन आ गया उसमें। और जब वो अपने आप को देखना शुरू करते तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत भारीपन है, उसे अच्छा नहीं लगता है, वो अपने जीवन के प्रति बहुत दुखी और अशांत और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती और उसे लगता है कि ये मेरा स्वरूप कैसे हो गया है। और फिर से उसे कोई चीज आकर्षित करती है और इस बार एक बहुत सुंदर एक जैसे हीरे जैसी कोई चीज चमक रही है। और वहां वो देखती है कि एक वृक्ष के ऊपर एक पत्ते के ऊपर एक सुंदर ओस की बूंद सूर्य की रोशनी में चमक रहा है, इसलिए एक सुंदर हीरे के जैसे चमक रहा है। और ये जो मिट्टी का बूंद है वो उसके साथ बातचीत करता है और कहता अरे तुम तो इतने सुंदर हो, तुम तो हीरे जैसे हो। और वो ओस की शुद्ध बूंद उसे कहती है कि वास्तव में तुम भी मेरे जैसे हो। और ये मिट्टी का बूंद कहता है नहीं, मेरे में तो बहुत गंदगी है, मेरे में तो बहुत भारीपन है, मेरे जीवन में तो बहुत दुख है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत शुद्ध हो, तुम तो कितने पवित्र हो। और ये ओस की जो शुद्ध बूंद है, जो चमक रहा है सूर्य की रोशनी में, वो कहता है नहीं, वास्तव में तुम भी मेरे जैसे ही हो, लेकिन तुमने अपनी यात्रा में बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली है जो तुम्हारे काम की नहीं है, और इसलिए तुम्हारे अंदर ये भारीपन आ गया है। अब क्योंकि कहानी है तो वो उसकी राय लेकर ये मिट्टी का जो बूंद है वो फिर से अपनी यात्रा को फिर से लेता है, पीछे हटता है, और हर एक उसके अंदर में जो चीजें हैं वो वापस लौटाता जाता है, और उसकी अपनी शुद्धता, उसकी अपनी पवित्रता, उसकी अपनी फ्रेशनेस को वापस प्राप्त कर लेता है। और फिर से उसका स्वरूप कैसे हो जाता है, एक शुद्ध ओस की बूंद के जैसे। तो वास्तव में तो ये कहानी है, लेकिन ये हमारी कहानी है। हमने भी अपने जीवन की यात्रा में अपने आंतरिक गुणों की जो शुद्धता है, पवित्रता है, जो स्वच्छता है, जो फ्रेशनेस है, उसको धीरे धीरे कम कर लिया है, और बहुत सारी चीजें हमने जीवन में प्राप्त कर ली है जो जरूरी है, लेकिन क्योंकि अंतर के गुणों, शक्तियों की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई है, हमारे अंदर में वो आत्मिक शांति जो है, जो एक धैर्यता जो है, वो धीरे धीरे कम हो गया है। छोटी छोटी बातों में हम रिएक्ट कर लेते हैं, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। हम जानते हैं कि जरूरी है उस समय शांत रहना, लेकिन फिर भी कोई विचारों में अंतर होने की वजह से हम थोड़ा रिएक्ट कर लेते हैं, उस संबंधों में एक दूसरे को दुख देते हैं, एक दूसरे के लिए नेगेटिव बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, और वो दुख की ऊर्जा की लेन देन एक दूसरे के साथ होती रहती है, और वो संबंधों में जो अशांति आ जाती है उसकी वजह से हमें आसपास का वातावरण भी बहुत भारीपन, बहुत तनाव महसूस होता है। और हम देखते हैं कि ये हमारे अंदर में जो अशांति है, जब हम कारोबार में आते हैं तो एक अशांत मन, चिंतित मन, जो बहुत सारा सोच चल रहा है उसमें, और बहुत सारे विचारों के वजह से, और उसमें भी नकारात्मक विचार, चिंता के विचार, इससे स्पीड जो है थॉट्स की बहुत ज्यादा होती है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी कम हो जाता है, और उसके वजह से हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे परिवार में है, चाहे कारोबार में है, हमसे कोई गलत निर्णय हो जाते हैं जिसका नुकसान फिर आगे बहुत हो जाता है। गलत निर्णय के वजह से जो हम कुछ बोल देते हैं या व्यवहार गलत कर लेते हैं, उसको फिर ठीक करने में बहुत सारा समय चला जाता है। तो हमारे अंदर की जो शांति की अनुभूति है, उसको हम कैसे मेडिटेशन के द्वारा फिर से अनुभव करें? तो यह हम आध्यात्मिकता के द्वारा राजयोग सीखते हैं, जिसमें हम महसूस करते हैं, परमात्मा हमें ये समझाते हैं कि हमारा अंतर का स्वरूप बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, हम एक शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा है। और जैसे ही हमने अपनी अंतर की शुद्धता को, शांति को महसूस किया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये स्मृति भी अगर जागृत की, तो ऑटोमेटिकली वो शांति की ऊर्जा हमारे सारे शरीर में भी प्रवाहित होती है, और आसपास के वाइब्रेशंस भी हमारे बहुत शांत, लाइट, पीसफुल, रिलैक्स हो जाती है। तो यहां हम राजयोग से सीखते हैं कि कैसे सारे दिन में बार बार हम ये स्मृति को, अवेयरनेस को जागृत करें। आज के जीवन में शांति जरूर हम चाहते हैं, लेकिन ये एक थॉट रहता है कि हमें अशांत नहीं होना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हम एंगर फ्री कैसे हो जाएं? जैसे आजकल हर स्थान पर हम देखते हैं नो स्मोकिंग जोन लिखा जाता है, ऐसे ही राज्यों के द्वारा हम सीखते हैं कि नो एंगर जोन घर को भी बना दें और कार्य क्षेत्र को भी बना दें। लेकिन उसके लिए परमात्मा हमें सिखाते हैं कि ये हम स्मृति लाएं कि आत्मा का निज स्वरूप ही शांति है। क्योंकि जब हम मन में बार बार ये सोचते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, माना कहीं ना कहीं हम ये अवेयरनेस में है, स्मृति में है कि मैं वास्तव में तो गुस्से वाला व्यक्ति हूं, मेरे में बहुत इरिटेशन है, मेरे में बहुत हलचल है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, लेकिन मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे बहुत अपने पर काबू पाना है, मुझे बहुत कंट्रोल करना है और मुझे शांत रहना है। तो इसमें तो बहुत मेहनत है, लेकिन परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा सिखाता है कि तुम हो ही शांत स्वरूप आत्मा। क्यों? क्योंकि तुम शांति के सागर की संतान हो, और इसलिए तुम अपने शांत स्वरूप स्थिति को जब अनुभव करते हो, ये एक स्वधर्म है हमारा। जैसे पानी का ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति, बहुत हल्कापन है उसमें, पानी में शीतलता है। तो कुछ समय के लिए अगर उसको अग्नि के संपर्क में लाते हैं, उसको बॉयल करते हैं, तो जरूर अग्नि का गुण वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन जैसे कुछ समय के बाद वो अग्नि से दूर हो जाता है, उसको अलग स्थान पर आप रख लेते हैं उस बॉइलिंग वाटर को, तो क्या हो जाता है? फिर धीरे धीरे वो कूल हो जाता है, क्योंकि उसका निज स्वरूप क्या है? शीतलता। ऐसे मुझ आत्मा का भी निज स्वरूप है शांति। और ये राजयोग के द्वारा जब हम स्मृति में लाते हैं, और साथ में राजयोग के द्वारा उस शांति के स्रोत के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो ईश्वर पिता की शांति की ऊर्जा धीरे धीरे हमारे अंदर समाती जाती है, हमारे अंतर की शांति की शक्ति को रिचार्ज करती है, सशक्त करती है, जिससे फिर धीरे धीरे कारोबार में रहते हुए भी हम अंतर की ये शांति के आधार से हर कार्य करेंगे। जैसे अगर एक पेरेंट के रूप में हम रोल प्ले कर रहे हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं मान रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमारी बात को स्वीकार नहीं कर रहे, तो अंतर ये स्मृति रहेगी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और मैं एक पेरेंट का रोल प्ले कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली जैसे पेरेंट का रोल प्ले कर रहा हूं, तो मेरे अंदर की शांति को मैं प्रयोग करूंगा, और सामने वाला जिसके साथ मैं बातचीत कर रहा हूं वो भी आत्मा है, वो भी शांत स्वरूप है, वो भी ओरिजिनली बहुत पीसफुल है। तो ये स्मृति से ऑटोमेटिकली हमारे शेयरिंग में वो शांति की ऊर्जा, धैर्यता, सहन शक्ति आती जाएगी। तो ये अंतर की अनुभूति के द्वारा, अंतर के खजानों को महसूस करते हुए, ये शांति हमारा एक निज स्वभाव बन जाएगी। और जैसे जैसे हम अंतर की इस शांति की शक्ति को अपने अंदर महसूस करेंगे, तो हमारे पास संबंधों में सहन शक्ति और समानी की शक्ति धारण हो जाएगी। सहन शक्ति अर्थात कोई भी बात हो तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। परिस्थिति जो भी बात हो तो उसको हम धैर्यता से समझेंगे, थोड़ा सा उस समय अपने आप को उस परिस्थिति में न्यारा होकर, डिटैच होकर उसको देखेंगे। उस समय कुछ कहना जरूरी है तो भी शांति से कहेंगे, नहीं तो उस समय उस व्यक्ति को थोड़ा सा रिलैक्स होने देंगे, उसको स्पेस देंगे, उसको समझेंगे, उसके अंदर के मनोस्थिति में जो तनाव है उसको समझेंगे, और फिर बाद में उसके साथ जब वो निश्चिंत हो गया है, वो थोड़ा सा लाइट हो गया है, फिर उससे बातचीत करेंगे। तो हमारे अंदर ये सहन शक्ति आती जाएगी, और सहन शक्ति के साथ साथ हमारे अंदर समाने की शक्ति भी आ जाएगी, अर्थात औरों के प्रति क्षमा भाव होगा। तो जब अंदर में वो शांति की अनुभूति होगी तो हम हरेक की विशेषता को देख सकेंगे, और इसके लिए हरेक के लिए हमारे पास शुभ भावना होगी। हम हरेक के साथ जब संबंध में आएंगे तो उसकी विशेषता को देखते हुए अंदर में उनके लिए गुड विशेष रखेंगे, उनको अप्रिशिएट कर सकेंगे। उस समय उनकी कमजोरी को न देखकर उसके लिए उन्हें क्षमा करते हुए उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे। हम उनको उनकी विशेषता के आधार से इनकरेज करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे अंदर ये शांति एक शक्ति का स्वरूप बन जाएगी, एक स्वभाव का अनुभव करेगी, तो हमारे अंदर ये समाने की शक्ति, ये सहन शक्ति नेचुरल रूप में संबंधों में भी हमें मदद करेगी, और जहां परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो हमारे पास सामना करने की शक्ति भी आ जाएगी। हम धैर्यता से, हिम्मत से एक कदम आगे रखेंगे और परमात्मा की मदद हमें जरूर मिलेगी। हर परिस्थिति को हम अपने मनोस्थिति के आधार से, स्वस्थिति को शक्तिशाली और समर्थ बनाने के आधार से पार कर लेंगे। तो उस रूप से हम देखते हैं कि शांति का अनुभव हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत मदद करेगा। हमारे जीवन में जैसे ही अंतर की शांति का अनुभव आवश्यक है, ऐसे ही जीवन में खुशी भी बहुत आवश्यक है। और हम देखते हैं कि जैसे हमने अपने अंतर की ये मनोस्थिति को महसूस किया कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, वैसे ही परमात्मा हमें सिखाते हैं कि आत्मा का निज स्वभाव सुख स्वरूप भी है, मैं हूं ही एक हैप्पी सोल। और इस पर भी मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। ये कहानी इस बहन की है जिसके अंदर में बहुत जीवन में एक आश है कि मुझे मेरा जीवन हमेशा खुशनसीब हो, एक मेरा जीवन खुशियों से भरपूर हो। और उसके लिए उसे एक बाधा महसूस हो रही है कि उसके पति जो है उसका कुछ ऐसा स्वभाव है जिसके कारण वो जीवन में खुश नहीं रह पाती। तो वो बहुत इच्छा रखती है कि कैसे भी करके मेरे पति परिवर्तन हो जाए, उनका ये स्वभाव चेंज हो जाए। और उसके लिए वो बहुत मन्नत रखती है, बहुत आस रखती है, बहुत सारे बड़े लोगों के पास, गुरुओं के पास, ऐसे तपस्वी लोगों के पास जाती है, उनसे मांगती है, उनसे प्रार्थना करती है। लेकिन हर एक व्यक्ति उनको यही कहता है कि तो समय पर बदल जाएगा, आप प्रार्थना कीजिए ईश्वर को। लेकिन वो उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती कि आप कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा हमें वरदान दे दो, कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरा पति बदल जाए और मेरा जीवन फिर से खुश हो जाए, खुशी से भरपूर हो जाए। तो एक बार वो समाचार सुनती है कि गांव में हिमालय से एक बहुत बड़े तपस्वी आए जो वर्षों से तप कर रहे थे, वर्षों से मौन में थे। अब उसके अंदर की ये आश फिर से जागृत हो जाती है और उसको एक विश्वास बैठ जाता है मन में कि ये जो तपस्वी आया है, क्योंकि वो हिमालय में इतने वर्षों की तपस्या के बाद आया है, मौन व्रत के बाद आया है, ये जरूर मेरी ये आश पूरी करेगा। और वो बहुत खुश होकर सोचती है कि मैं कैसे भी करके इनके पास पहुंचूंगी और इनसे अपनी ये आश रखूंगी और ये मेरे जीवन को परिवर्तन करने में मदद करेंगे। तो वो समाचार सुनती है, जाती है उस ऋषि मुनि के पास। और बहुत समय के बाद जब उसको समय मिलता है, उसको वो मौका मिलता है, वो मुनि के पास पहुंच जाती है और उस ऋषि मुनि को वो प्रार्थना करती है बहुत प्यार से, कहती है कि मैं जो आप कहोगे मैं करूंगी, लेकिन आप मेरे पति को बदल दीजिए। कोई तो आपके पास ऐसी जादू की पुड़िया होगी, कोई तो आपके पास ऐसी शक्ति होगी। अब ये भी ऋषि मुनि फिर से यही सोचते हैं कि मुझे तो कैसे इसको बोलना है, समझाना है कि भाई ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता है, ये तो समय के अनुसार ही बदलेंगे। वो कोशिश भी करते हैं लेकिन इस बार ये माता जो है वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। वो हाथ जोड़ रही है, पैर पकड़ रही है और वो ऋषि मुनि को बहुत प्यार से प्रार्थना कर रही है कि कैसे भी करके आप कोई तो ऐसी अपनी चमत्कारिक शक्ति को प्रयोग करो और मेरे पति को बदल दो। तो तब वो ऋषि मुनि उनको कहते हैं कि ठीक है, एक उपाय जरूर है, लेकिन उस उपाय के लिए आपको कोई ऐसी चीज लानी पड़ेगी जो बहुत डिफिकल्ट है, असंभव है आपके लिए, आप नहीं कर सको, इसलिए आप छोड़ दो इस बात को। अब वो जो माता है उसके अंदर ये विश्वास था कि कैसे भी करके मुझे ये परिवर्तन करना ही है अपने पति को, मुझे ये ऋषि मुनि के द्वारा ये कार्य कराना ही है। तो वो कहती है नहीं नहीं आप मुझे बताओ, मैं जो भी चीज है मैं करूंगी। ऋषि मुनि कहते हैं कि देखो मुझे एक जादू की पुड़िया उसके लिए बनानी है, लेकिन उस पुड़िया में कोई ऐसी चीज मुझे डालनी होगी जो असंभव है तुम्हें लाने के लिए। तो कहा मुझे बताइए तो सही। तो कहा उसमें शेर की मूंछ चाहिए। अभी सुनते ही वो माता तो घबरा जाती है क्योंकि शेर तो कैसे कहां मिलेगा, वो तो जंगल में होगा और वो गांव के बहुत अंदर गहराई में बहुत बड़ा जंगल है, वहां उसने सुना जरूर है कि शेर होते हैं लेकिन उसको तो बहुत डर लगता है। तो कहती है कि कैसे लाऊंगी, वो सोचते सोचते वापस घर चली जाती। लेकिन रास्ते भर में उसके मन में विश्वास पक्का हो जाता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार ये मौका वो जाने नहीं देगी। और उसके अंदर ये दृढ़ता हो जाती है कि मैं कैसे भी करके ये जंगल में पहुंचकर, शेर के पास पहुंचकर ये मूंछ लूंगी। और वो दृढ़ संकल्प उसके अंदर आ जाता है और उसके वजह से वो हिम्मत करके उस गांव के बाहर जब शाम हो जाती है तो वो चल चलकर वो जंगल के तरफ जाती है। अब कुछ दिन तक वो जंगल के पास जैसे जाती है तो थोड़ा वातावरण जंगल का देखकर घबराकर वापस घर आ जाती। ऐसे रोज थोड़ा 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 और अंदर जंगल की गहराई में जाना शुरू करती और फिर वो जंगल के बीच के स्थान पर एक पहुंचती है जहां बहुत सुंदर एक झील है, बहुत सुंदर वातावरण है और वहां वो महसूस करती कि कुछ ऐसे जानवर हैं और उसमें शेर भी है और उसके टोली के साथ वो वहां आराम करते हैं, वो बहलते हैं। तो वो वहां नजदीक पहुंचते ही और वो दृश्य देखते ही वो बहुत डर जाते, लेकिन धीरे धीरे फिर से उसकी दृढ़ता से हिम्मत रखकर वो रोज वहां जाती है। और धीरे धीरे क्योंकि वो रोज वहां जाती है तो वहां के जो जानवर है, विशेष करके वहां जो शेर है, वो भी धीरे धीरे उसकी उपस्थिति से एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा मौका आता है जब वो देखती है कि शेर सोया हुआ है। बहुत धीरे धीरे शेर के नजदीक जाकर उसकी एक मूंछ तोड़कर वहां से भागती है। वो पीछे नहीं देखती और भाग भाग के कैसे भी करके वो उस समय उस जंगल के बाहर निकलकर अपने गांव पहुंच जाती। उसको ये भी पता नहीं है कि बहुत रात हो चुकी और बहुत बारिश पड़ रही है, लेकिन वो कोई चीज उसको बॉदर नहीं करती है। वो भाग भाग के अपने घर में पहुंचती और फिर वहां से फिर से भागकर वो उस ऋषि मुनि के पास पहुंचती। अब रात्रि का समय है, ऋषि मुनि तो सोए हुए हैं और बहुत बरसात है, तो वो वहां हर दरवाजा खटखटा रही आवाज की वजह से जाग नहीं रहे। बहुत समय के खटखटाने के बाद वो ऋषि मुनि दरवाजा खोलते हैं और उस माता को देखते, अभी 6 महीने हो गए, वो माता को देखते तो वो पहचानते ही नहीं, और उसको लगता है इतनी रात्रि को बारिश में ये माता क्यों आई है। और वो माता जो है वो बहुत अपने कपड़ों में छिपा छिपा कर कोई चीज लाई हुई है, और वो जैसे अंदर आती है वो ऋषि मुनि को कहती है कि भाई आपने जो कहा था ना, मैं वो चीज ले आई हूं, अब कैसे भी करके जल्दी से आप वो जादू की पुड़िया बना दो। तो ऋषि मुनि को तो याद ही नहीं है, जब उसको धीरे धीरे याद आता है तब उसको ध्यान में आता है, तो वो उस माता को कहता है कि तुम वो चीज लाई हो। और माता कहती है हाँ ये देखो, ये है शेर की मूंछ। ऋषि मुनि उस माता को देखता है और उसको उसकी दृढ़ता दिखाई देती है। वो उस शेर की मूंछ को लेता है और उसी कुटिया में वहां आग जल रही है, उस आग में डाल देता है। और जैसे ही वो आग में उसको डाल देता है, वो माता रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि इतना मुश्किल से, इतनी मेहनत से मैं वो शेर की मूंछ लाई हूं और आपने इसको जला दिया, अब क्या होगा, कैसे मेरी जादू की पुड़िया बनेगी, कैसे होगा। अब वो ऋषि मुनि उस माता को बहुत प्यार से कहता है कि तुम शांत हो जाओ। उसको बिठाता है और उसको कहता है, माता आपके पास इतनी दृढ़ता की शक्ति है कि आपने शेर को भी बदल दिया, उसकी वृत्ति को भी बदल दिया, उसको भी परिवर्तन कर लिया। इतनी ही शुभ भावना, इतनी ही शुभकामना और इतनी दृढ़ता अगर आप अपने पति के साथ रखेंगे तो कब से उसको बदल सकती। तो कहने का भाव है कि ऐसी कोई जादू की पुड़िया नहीं है जिससे हम किसी के स्वभाव को बदल सकें या कोई अपने जीवन की परिस्थिति को बदलकर अपने जीवन को फिर से खुशियों से भरपूर कर सकें, लेकिन हमें अपने विचारों को जरूर बदलना है। और यहाँ राजयोग के द्वारा हमें वो जादू की पुड़िया कहो या वो परमात्मा के द्वारा ज्ञान की समझ और शक्ति मिल जाती है जिससे हम अपने विचारों को बदल देते हैं, जिससे हम समझते हैं कि खुशी जो है ये मेरा अपना निज स्वभाव है। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ वैसे ही मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। खुशी मेरा एक नेचुरल स्वभाव है और मैं अपने आप को खुश रखने के लिए जिम्मेवार हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू रिमेन हैप्पी, ये मेरी जवाबदारी है। इसलिए मैं ये कहूं कि इस परिस्थिति की वजह से मैं दुखी हूं, ये व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया इसलिए मैं दुखी हूं, ये वास्तव में कहना या समझना ये ठीक नहीं है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमारी स्वस्थिति और परिस्थिति दोनों में अंतर है। परिस्थिति परिवर्तनशील है, वो तो बदलती ही रहेगी। कोई भी चीज जो भी हम देख रहे हैं वो स्थायी नहीं हो सकती, लेकिन मेरी मनोस्थिति मेरे पास है, उसमें मेरा प्रभाव है, उसमें मेरा चॉइस है। तो मुझे क्या सोचना है, मुझे अपनी मनोस्थिति को कितना सकारात्मक और आध्यात्मिक रखना है, ये मेरा चॉइस रहेगा। तो अगर मैं अपनी मनोस्थिति को आध्यात्मिक ज्ञान से, समझ से दिशा देती हूँ, सकारात्मक दिशा देती हूँ, तो मैं हर परिस्थिति में पॉजिटिव देख सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ। तो जैसे कि कहानी में भी हमने देखा कि दृढ़ता और शुभ भावना जरूरी। वो माता को दृढ़ता थी कि कैसे भी करके मैं ये प्राप्त कर सकूंगी। तो अगर वही दृढ़ता और शुभ भावना उसने रखती कि नहीं नहीं ये संबंध जरूर सुखदायी बन सकेंगे। मेरे पति जरूर बहुत प्यार से मेरे साथ व्यवहार करेंगे और हमारा जीवन हमेशा सकारात्मक आनंदित होगा। ये शुद्ध संकल्प अगर हम रखते हैं, हम शुभ भावना रखते हैं, तो उससे बहुत संबंधों में सुख या प्रेम बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि खुशी जो है ये वास्तव में वातावरण में हमें ढूंढना नहीं। आज हम समझते हैं कि खुशी के लिए हमें कुछ खाना अच्छा जरूरी है, कुछ सुनना जरूरी है, कुछ पहनना जरूरी है। ये सब चीजें जरूर हमें खुशी देती, कुछ प्रकार की खुशी जरूर है जो हमें बाह्य ये साधनों द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन वो खुशी परमानेंट नहीं। क्योंकि वही चीज जो हमें बहुत पसंद है खाने के लिए, हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ भी जाता है। हम देखते हैं कि कोई संगीत है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर हम सारा समय तो नहीं सुन सकते। तो ये जो बाहर से खुशी प्राप्त होती है वो टेम्पररी। लेकिन परमात्मा हमें ज्ञान के आधार से समझाते हैं कि आप हो ही सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप। ये आपका नेचुरल स्वभाव है। और इसकी निशानी क्या है कि जैसे हम दुखी होते हैं हमारे अंदर एक खोज होती है, हमारे अंदर एक जैसे एक प्रयास शुरू हो जाता है कि कैसे मन को फिर से हमें आनंदित करना है, फिर से कैसे मुझे खुश रहना है। इसलिए कोई ना कोई रूप से प्रयास करके हम अपने आप को फिर से खुश करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। क्यों हम दुखी नहीं रहना चाहते? क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं। दूसरी बात है कि nobody can take away my unhappiness, और दूसरी बात यह है कि nobody can take away my happiness. इट इज माई ओन ट्रेजर। ये मेरा अपना स्वभाव है, मेरा अपना खजाना है। मैं जब तक न चाहूं कोई और व्यक्ति मेरी खुशी को ले नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति का व्यवहार, कोई बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है तो ये भी मेरा चॉइस है, क्योंकि मैं क्या सोच रही हूं, मैं क्या महसूस कर रही हूं, वो मेरा चॉइस है। तो ये जब हम समझ जाते हैं तो अपने आप को हर परिस्थिति में खुश रखना और हर एक संबंध में सुख की लेन देन करना, अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस रखना, ये हम सीख लेते हैं। जिसके वजह से हम स्वयं तो खुश रहते ही हैं, लेकिन हमारी खुशी के आधार से एक वातावरण भी हम हमेशा आनंदित क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां हम खुश रहते हैं, कहा जाता है कि हैप्पी पीपल आर मोर प्रोडक्टिव पीपल। वहां ज्यादा ऊर्जा है, वहां ज्यादा क्षमता है, हम बहुत अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे परिवार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे समाज हो। जहां हम खुश रहते हैं तो हर परिस्थिति में हम समाधान को देख सकते हैं, हम वातावरण में हार्मनी, एकता ला सकते हैं, हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, हम औरों को भी उमंग उत्साह में ला सकते हैं। हम खुश हैं उसकी निशानी क्या होगी? प्रसन्नता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता। और हम देखते हैं कि अ स्माइल इज ऑलवेज इन्फेक्शियस। हम जैसे ही हर्षित होते हैं तो दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी, उस समय उनके मन में भी खुशी आ जाती। हम किसी से भी मिलते हैं, हमारी बड़ी दादी जी जो हमारी चीफ है, दादी गुलजार, वो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप मिलते हैं, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे कारोबार के लिए आप मिलते हैं, तो आप खुशी से दो मीठे बोल जरूर बोलिए, तो ये शरबत जरूर पिलाइए। क्योंकि स्थूल शरबत तो हमेशा नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि खुशी के दो बोल तो हम बोल सकते हैं। दूसरा, दादी ने कहा खुशी की मिठाई खिला, अर्थात मुस्कुरा के मिलो, प्यार से मिलो। तो उससे क्या होगा कि कारोबार तो हम करेंगे ही, चाहे बातचीत ही करें, चाहे सिर्फ बातचीत से हम एक दूसरे को जाने, लेकिन जो खुशी की लेन देन की, उसके लिए हम एक दूसरे को मन से दुआएं देते हैं और उससे हमारे संबंध बहुत मजबूत होते हैं। और हम देखते हैं चाहे बिजनेस हो, चाहे वर्क के हमारे एरिया है जहां हम हर एक के साथ कारोबार करते हैं, वहां ये जो खुशी की लेन देन है, प्यार की लेन देन है, इससे हमारे संबंध बहुत मजबूत होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे अंतर की जगत में हमारा नेचुरल स्वभाव ही क्या है? शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो आत्मा के ये निज गुण जो है, यही उसके ट्रू एसेट्स है, यही उसके निज ओरिजिनल ट्रेजर्स हैं, खजाने हैं। अगर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन बुद्धि को हम इस अंतर की जगत की दिशा में ले जाते हैं। हम समझते हैं कि शरीर जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक साधन है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली मस्तक के बीच मैं एक सुंदर दिव्य आत्मा हूँ, एक सुंदर दिव्य ऊर्जा हूँ जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, लाइफ सोर्स एनर्जी है। आध्यात्मिक भाषा में हमने उसको आत्मा कहा, सोल कहा, स्पिरिट कहा, साइंटिफिकली उसको मेटाफिजिकल सेल्फ कहा, और इस आत्मा की ऊर्जा जो है इसके अंदर में परमात्मा के दिए हुए ये गुण समाये हुए हैं, खजाने हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। तो आत्मा जैसे ये राजयोग के अभ्यास से ये गुणों को महसूस करती है और परमात्मा से कनेक्ट करके इन गुणों की ऊर्जा को रोज चार्ज करती है मेडिटेशन के द्वारा, तो धीरे धीरे जीवन में नेचुरल लेवल पर वो शांत हो जाती है, उसके अंदर धैर्यता आती जाती है, सहन शक्ति और समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आ जाती है। और धीरे धीरे जैसे वो हम आत्मा आनंदित रहना शुरू करते हैं, खुश रहते हैं, नेचुरली अंदर से लाइट फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो इससे एक बहुत सुंदर सकारात्मक ऊर्जा, उमंग उत्साह का वातावरण हम क्रिएट करते हैं। तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप भी राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने ये अंतर के गुणों के खजानों को पहचाने और आपके जीवन में सदा सुख शांति की अनुभूति सदा रहे। ओम शांति।
सचमुच शांति में कितनी शक्ति है, कितना सुकून है। हमने शांति के इन पलों को कितनी गहराई से अनुभव किया और ऐसा लग रहा है कि सचमुच यही हमारी वास्तविक संपत्ति है। संसार में जितनी भी संपदा है वो सब हमारे पास हो, लेकिन ये जो शांति की अनुभूति हो वो ना हो तो सचमुच सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए हमें अपने इस शांति के स्वधर्म में रहना है, केवल इस स्मृति में ही रहना है कि मैं शांत स्वरूप हूं, ये मेरी संपदा है, ये मेरी वास्तविकता है, ये बिल्कुल नेचुरल रूप में मैं हूं। जब इस स्मृति में ही रहेंगे तो हमें ये अनुभूति सहज और स्वतः होती रहेगी। और ये सुंदर अनुभूति कराने के लिए दीपा बहन जी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। राय मित्रों, अंतर की इसी यात्रा को, इसी गहराई को कायम रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं ब्रह्मा कुमारी प्रेम बहन जी की ओर, जो फरीदकोट से हैं, सीनियर राजयोगा टीचर हैं। आप भी हमें जो अंतर की यात्रा है, मन की जो शांति है, मन की जो स्थिरता है, उसका राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अनुभव कराएंगे ब्रह्मा कुमारी प्रेम बहन जी।
ओम शांति। ज्ञान सागर, प्रेम सागर, शांति के सागर, परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्रिय भाई एवं बहनों, अभी हम सब अपने उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे और ये शुभ संकल्प करेंगे कि विश्व की सर्व आत्माएं दुख से, अशांति से, तनाव से, कोरोना से मुक्त हो जाएं, ऐसी शुभकामना, शुभ भावना से हम उस पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि उस पिता परमात्मा की याद में बैठने की विधि क्या है। सर्वप्रथम तो मैं कौन हूं, याद किसको करना है, तो अपने स्वरूप में स्थित होना है। मैं इन आंखों द्वारा देखने वाली, इन कानों द्वारा सुनने वाली, इस मुख द्वारा बोलने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये शरीर मेरा रथ है, मैं इसकी रथवान हूं, और इस शरीर में भृति रूपी आसन पर मैं आत्मा विराजमान हूं। मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु है और मुझ आत्मा में मुख्य सात गुण हैं। सात गुणों से भरपूर मैं आत्मा हूं। अपनी वास्तविकता को स्वरूप में लाएंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। अपने वास्तविक स्वरूप को याद करेंगे और मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से अलग आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान हूँ जो मेरे पिता परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं, वो भी ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं और पिता परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति स्वरूप है। मैं आत्मा भी इस शरीर से न्यारी अति सूक्ष्म निराकार स्थिति में स्थित होकर के उस निराकार पिता परमात्मा की याद में बैठूंगी। कहते हैं कि भगवान को याद करने के लिए मुझे पहले अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होना होगा, तब हम उस निराकार पिता परमात्मा की याद में रहेंगे। कहते एक बार कुएं ने सागर से पूछा, हे पिता, तुम नदियों नहरों को अपनी गोद में समा लेते हो और मुझे अलग थलग छोड़ देते हो। तो सागर ने कहा कि असीम से मिलने के लिए असीम बनना पड़ता है, तुम अहंकार की दीवार में जकड़े हुए हो, तोड़ दो इस दीवार को, प्यासी धरती को सींचते हुए, खेतों को हरा भरा करते हुए समा जाओ मेरी गोद में, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कहने का भाव है कि वो पिता परमात्मा जो सागर हैं, निराकार हैं, मुझे भी आत्म स्वरूप में निराकारी स्थिति में स्थित होकर के उस ज्ञान सागर के प्रेम में समा जाना है, जो हम सर्वात्माओं के पिता हैं और मुझ आत्मा के भी पिता हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि मैं आत्मा मन बुद्धि और संस्कार तीन शक्तियों का स्वरूप हूँ। मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है और जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार कहलाता है। तो देखिए, मन हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, मन एक संकल्प शक्ति है और इसी मन के द्वारा ही हम उस पिता परमात्मा को याद करेंगे। सब तरहों से अपने बुद्धि को एकाग्र कर, संकल्पों को एकाग्र कर उस पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि ये जो इतनी ऊंची चट्टान है, क्या इससे बड़ा कोई है? उन्होंने कहा, हाँ, इससे बड़ा लोहा है जो इसे चूर चूर कर देगा। फिर उन्होंने पूछा, क्या लोहे से बड़ा कोई है? बोला, हाँ, लोहे से बड़ी अग्नि है जो इसको पिघला देगी। फिर उन्होंने पूछा, क्या अग्नि से बड़ा कोई है? बोला, हाँ, अग्नि से बड़ा पानी है जो इसको शीतल कर देगा। फिर उन्होंने पूछा, क्या पानी से बड़ा कोई है? बोला, हाँ, पानी से बड़ी वायु है, वो इसको जिधर चाहे ले जाए। उन्होंने कहा, अगर ऐतराज ना करें तो एक प्रश्न और पूछें, क्या वायु से बड़ा भी कोई है? तो उन्होंने कहा, हाँ, वायु से बड़ी है मनुष्य की संकल्प शक्ति, ये मनुष्य को जिधर चाहे उधर ले जाए। तो ये संकल्प शक्ति के द्वारा ही हम अपने उस पिता परमात्मा को याद कर सर्व शक्तियां और अथाह प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से उस पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे और जैसे जैसे मैं बोलूंगी, आप अपने मन के संकल्प के द्वारा वैसे वैसे उस स्वरूप में स्थित होते जाए और आप उस परमात्म प्यार की अनुभूति करें। तो आइए अब हम सब अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के उस पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इन आंखों द्वारा देखने वाले, इन कानों द्वारा सुनने वाले,
और वापिस कर्म
क्षेत्र पर जाकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। सर्वात्माओं के कल्याण की शुभ भावना रखूंगी। प्यारे पिता, आपका आशीर्वाद लेकर कर्म क्षेत्र पर जा रही हूँ और विश्व की सर्वात्माओं के लिए एक दृढ़ संकल्प लेती हूँ आपसे शांति के शक्ति के वाइब्रेशंस लेकर के विश्व की आत्मा तक फैलाएंगे और ऐसी रखेंगे कि आप शांत रहें, विश्व की आत्माओं की सर्वात्माएं पूर्ण हो, शक्ति का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो, विश्व बंधुत्व की भावना हो, सर्वात्माओं का कल्याण हो, आपके आशीर्वादों से विश्व की आत्माएं भरपूर हो, ऐसी शुभकामना रखती हूँ। इस प्रकार आप
धन्यवाद बहन जी, आपने हमें खुद से जुड़ने की विधि बताई, परमात्मा से जुड़ने की विधि बताई और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम परमात्मा की ही छत्र छाया में बैठे हुए हैं और सुख शांति पवित्रता की जैसे किरणें हम पर बरस रही हैं, उसका प्रवाह हम पर आ रहा है और हम उन चीजों से भरपूर होते चले जा रहे हैं। सचमुच कितनी अद्भुत अनुभूति थी। निश्चित रूप से आज हम मित्रों इस अभ्यास को बीच बीच में जरूर करते रहेंगे जब भी हमें वक्त मिले। यही अभ्यास है जो हमारे मन को शांत रखेगा और बाहरी जो वातावरण का हलचल है उसमें हमें स्थिर रहने में मदद भी प्रदान करेगा। तो पाथवे टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का हमारा ये सफर जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, शाम को पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।
ब्रह्मा कुमारीज बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग प्रेजेंट्स टू डे ई कॉन्फ्रेंस, पाथवेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी।